ओम शांति। ये मुरली है 8 मई 1973। हम पढ़ रहे हैं आलस्य और अलबेलापन, स्पार्क की किताब संकलन। मुरली है 8 मई 1973। स्वयं के त्याग से औरों का भाग्य बनता है। जहां स्वयं का त्याग नहीं, वहां औरों का भाग्य नहीं बनता। बाप ने स्वयं का त्याग किया, तभी तो आप अनेक आत्माओं का भाग्य बना। तो शुरू की स्थिति में स्वयं के सभी सुखों का त्याग था, इससे यह भाग्य बने। अब जितना त्याग उतना भाग्य बना रहे हो और रोका, इसलिए वारिस छिप गए हैं। तो अब फिर से वही महादानी बनने का संस्कार, वह सदा सर्व प्राप्ति होते हुए भी और सर्व साधन होते हुए भी साधन में न जाओ, साधना में रहो। अभी साधना कम है, साधन ज्यादा है। पहले साधन कम थे, साधना ज्यादा थी, इसलिए अभी निरंतर उस साधना में रहो, अर्थात साधन होते हुए भी त्याग वृत्ति में रहो, जिससे थोड़े समय में ऊंची आत्माओं का भाग्य बना सको। बाप दादा ने सभी के हाथ में अब आत्माओं के भाग्य की रेखा लगाने की अथॉरिटी दी है। तो ऐसा न हो कि अपने त्याग की कमी के कारण दूसरों को कारण अनेक आत्माओं के भाग्य की रेखा संपन्न न कर सको। बहुत जिम्मेवारी है। जैसे जैसे समय समीप आता जा रहा है, वैसे वैसे संकल्प में भी व्यर्थ न गवाने की जिम्मेवारी भी हरेक आत्मा के ऊपर पड़ती जा रही है। अभी अपना बचपन नहीं समझना। बचपन में जो किया वो अच्छा लगता था। बच्चे को अलबेलापन अच्छा लगता है, बड़प्पन नहीं। और बड़ों को अलबेलापन अच्छा नहीं लगता। इसलिए समय के प्रमाण अपने स्वमान को कायम रखते हुए जिम्मेवारी को संभालते जाओ। समझा? समझाया उन्हें जाता है जो बेसमझ है। तो बाबा कह रहे हैं स्वयं के त्याग से क्या करो, औरों का भाग्य बनता है। स्वयं के त्याग से औरों का भाग्य बनता है। कौन से त्याग से? ब्राह्मण आत्माओं को त्याग किन चीजों का करना है? व्यर्थ संकल्पों का। और किसका त्याग करना है? ब्राह्मण आत्माओं को। मैं थोड़ा सा छोटे वाला और अलबेलापन का त्याग एक, और पर चिंतन का त्याग, पर दर्शन का त्याग, खान पान की आसक्ति, किसी की कमी कमजोरी देखने का, और एक्स्ट्रा साधन सुविधाओं का, और वो तो जरूरी भी है ना, काम की चीज है। नींद, नींद का क्या करना है? कितना नींद करनी है? फिर नींद का ना, इसके लिए नींद को तो संयमित करना है। ब्राह्मण जीवन में दो चीजें एडजस्ट करनी होती है। जिसने वो दो चीजें सेट कर दी, उसका ब्राह्मण जीवन सफल। एक भोजन और दूसरा नींद। एक भोजन और दूसरा नींद, कब खाना है, कितना खाना है और क्या खाना है, इसको समझ लिया तो तो एक तो नींद और दूसरा है नींद, कितनी नींद करनी है। ऐसा नहीं कि नींद ही छोड़ दो या इतनी कम कर दो कि थकान हो जाए, जिससे सेवा ही ना हो। नींद और भोजन, ये दो चीजें ऐसी है जिनको संयमित करना है, नियमित करना है, कंट्रोल करना है, सेट करना है हमारे प्रकृति के अनुसार। किसी को शायद हो सकता है ज्यादा नींद की जरूरत है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है नींद भी थोड़ी ज्यादा चाहिए। कम तो वो आती नहीं है, परंतु शरीर थकान महसूस होती है तो ज्यादा लगती है उनको। और किस चीज का त्याग करना है, वो अति सूक्ष्म त्याग है। नाम नाम हो जाए, मैंने ये किया, मैंने ये किया तो अरविंद भाई सबको पता चल जाए, तब तक शांति नहीं मिलती, कलेजा ठंडा नहीं होता है तब तक। अच्छा काम तो किया, परंतु गीता बहन जब तक सबको पता ना चले तब तक शांति नहीं मिलती है। तो नाम मान मिल जाए, टिमटिमाते दीपक मान, दूसरे हमें मान दे तो अच्छा लगता है। सम्मान मान, नाम मान और शान, हमारी भी शान है। हम और बस में गाड़ी आनी चाहिए अपमान है हमारा तो हम और लाइन में पैदल ही ठीक है दादी बताती है अपना अनुभव मुंबई में, आधा बस से आधा चल के बचाने के लिए पैसे। त्याग से दूसरों का भाग्य, तो नाम मान और शान, ये इच्छा आत्मा में रहती है। एप्रिसिएशन, हमने कुछ अच्छा कार्य किया, बोला कुछ किया तो हम चाहते हैं कि इसकी स्तुति हो जाए, प्रशंसा हो जाए, एप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट। अच्छी रंगोली निकाली तो क्या चाहते हैं,
नाम लिख दे
कोई कहे कि बहुत बढ़िया निकाली वो तो अति जैसे जैसे अध्यात्म में गहरे उतरते जाओगे इस तरह की बाधाएं आनी चालू होती है। फिर इतनी सूक्ष्म बाधा है ये कि ये समझ ही नहीं सकते है कोई कि ये भी माया है, परंतु उतरना जरूरी है, उसके सिवा वो सुख नहीं प्राप्त हो सकता है। जितने हम सूक्ष्म होते जाते हैं माया भी उतनी सूक्ष्म होती जाती है, जितने हम बलवान होते जाते हैं, जितने विकारों को हम जीतते जाते हैं तो वो भी अपना एक नए नए रूप धारण करते हैं, जिसे हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ये भी एक रूप हो सकता है, स्वप्न में भी नहीं था उस रूप में होता है। और किसका त्याग, त्याग का भी त्याग ये जरूरी है। हाँ थोड़ा दूसरा संदर्भ है, त्याग का भी त्याग, त्याग किया उसका ही अभिमान। तुम्हारा कोई त्याग है, त्याग देखना हो तो इधर, हमारा देखो त्याग, इसे कहते हैं त्याग। वो बताया था ना, साधु एक करोड़ों की जायदाद थी छोड़ दिया, परंतु जो अखबार 30 साल पहले अखबार में खबर छपी थी उसकी, वो क्या कहते हैं उसको, कटिंग अभी भी है। 30 साल हो गया संन्यास लेकर, पर 30 साल पहले जो त्याग किया था, सारा कुछ छोड़ के संन्यास लिया था, वो जो अखबार में खबर छपी थी उसकी वो कटिंग अभी भी जेब में है। और हर प्रवचन में एक ही बात, कौन सी, कि मैंने करोड़ों की जायदाद को लात मार दी। तो सभा में कभी किसी ने पूछ लिया कि लात ठीक से शायद नहीं लगी जो अब तक भी उसका वर्णन है, अब तक भी उसका चिंतन है। त्याग तो किया, परंतु त्याग का ही अभिमान। बाबा ने कहा सर्वनिश्च त्यागी। प्रेरणा। चलो और किस चीज का त्याग? अभी सूक्ष्म त्याग, एक्स्ट्रा रेस्ट। सूक्ष्म त्याग में व्यर्थ संकल्प, दूसरों की कमजोरियों का क्या करो? दूसरों की कमजोरी का, दूसरों की कमजोरी को देखने का त्याग करो।
अपने संकल्प का जाल नहीं दो।
संकल्पों का क्या विस्तार? खुद ही फंस जाओ।
हाँ,
परंतु प्रश्न ये है, अगर किसी बीमार, किसी ने, एक साधु ने एक बीमार व्यक्ति से कहा, बीमार बच्चा था, उस बच्चे से कहा तुम अपनी बीमारी छोड़ क्यों नहीं देते? बहुत बुखार था, बच्चे ने कहा बीमारी छोड़ना मेरे हाथ में थोड़ी है। बहुत ही अच्छा प्रश्न उत्तर दिया बच्चे ने कि बीमारी छोड़ना मेरे हाथ में नहीं है। भगवान ने कह दिया कि विकारों को छोड़ो। तो प्रश्न यही है कि क्या ये हमारे हाथ में छोड़ देना ये इतना आसान है कि संकल्प किया और छूट गए?
बाबा है।
ये विकार की जड़ें कहाँ है? अवचेतन में है। हमारे जो संकल्प है वो चेतन में चल रहे हैं, हमारे जो संकल्प है वो कॉन्शियस माइंड में हम संकल्प कर रहे हैं, और इसकी जड़ें है सबकॉन्शियस में, अवचेतन में, अंतर मन में है, अर्ध चेतन मन में है, वो इतना सुरक्षित है वहां पर, और हम यहाँ जो भी संकल्प कर रहे हैं वो ऊपर। पाश्चात्य में एक मनोवैज्ञानिक हुआ है जिसमें फादर ऑफ, जिसको कहते हैं साइकोथेरेपी, सिगमंड फ्राइड, सुना होगा नाम, जिसने क्रांति ला दी थी संसार में, जिसने कहा कि काम विकार अति आवश्यक है, अगर उसको दबाया तो वो और विक्षिप्त तो हो जाएगा। इसके लिए जब से उसने ये सिद्धांत रखे सारे विश्व भर में काम विकार का प्रकोप बढ़ गया, क्योंकि उसने इतना साइंटिफिक ढंग से वो सब कुछ बातें कही, बहुत गहरी बातें बताई। बचपन से ही वो एक ही चीज रहती है, उसको ही दबाया जाता है, और उसको दबाने के वजह से और वो बढ़ती है। जितना सप्रेस करो उतना इंसेनिटी बढ़ती है, विक्षिप्तता आती है मन में। तो उसके जीवन की कहानी है कि वो किसी होटल में रुका एक दिन, और रात को उसे सोना था, तो जो प्रकाश का जो वहां सोर्स था, वो जो क्या कहेंगे उसे दिया था, उसने सोचा अब इसको बुझा देता हूं, और रात भर बुझाने का प्रयास किया, फूका, परंतु वो बुझा ही नहीं। तो सुबह उसने पूछा उस होटल के मैनेजर से कि ये रात भर में बुझा क्यों नहीं, मैंने इसका कितना फूका? तो उस मैनेजर ने कहा ये जो बल्ब है, ये जो दिया है, ये विद्युत का है, इलेक्ट्रिक का है, ये वो मिट्टी का बल्ब नहीं है, मिट्टी का दिया नहीं है ये, तो हम जो फूक रहे हैं विकारों को, तो हमारा प्रयत्न भी वैसा ही है लगभग, कि ये दिया जो है विद्युत का है और हम उसे फूक रहे हैं, चेतन में संकल्प कर रहे हैं, परंतु उसकी जड़ें इतनी गहरी है, जन्म जन्म की है, वो बहुत गहराई में बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं। तो उस तक पहुंचना ही कितना मुश्किल है, वो अचेतन में है, अंदर है, तहखाना है, जैसे ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अंडरग्राउंड है, एक स्टोर रूम है, उसमें है, और हम यहाँ पे तलवार चला रहे हैं, भागो यहां से, और खुश होते हैं कि भाग गए, अभी नहीं रहे, अभी क्रोध नहीं रहा, और अचानक एक दिन फिर आ जाता है, अभी ईर्ष्या नहीं रही, अचानक एक दिन फिर आ जाती, अभी द्वेष नहीं रहा, अचानक एक दिन आ जाता है, अभी तो कोई लोभ नहीं है, संसार का कोई मोह नहीं है, किसी से कोई मोह नहीं, और अचानक कोई व्यक्ति सामने आ जाता है और मोह प्रकट हो जाता है, आंसू बह जाते हैं। क्यों देवेंद्र भाई, बराबर है ना? कहां से आते हैं ये? हमने तो खत्म कर दिया था, हम तो ब्राह्मण बन गए थे, अतीन्द्रिय सुख में झूल रहे थे, आज के वरदान में बोला है बाबा ने, छह प्रकार के झूले में झूलते हो तुम, आनंद का झूला, सुख का झूला, अतीन्द्रिय सुख का झूला, खुशी का झूला, ज्ञान का झूला, परमात्मा गोद का झूला। परमात्मा गोद अर्थात लवलीन अवस्था, याद की लवलीन अवस्था, ये परमात्मा गोद है, इस गोद में जन जन के दुख दर्द भूल जाते हैं। अगर जन जन के दुख दर्द भूल जाते हैं तो फिर कहां से आ जाते हैं फिर ये दुख दर्द? जरूर ये दुख दर्द के रहने का स्थान कहीं और है, उस तहखाने में रहते हैं वो, कंदराओं में, गुफाओं में, मन के नुक्स एंड कॉर्नर्स, कहीं ना कहीं छुपे हैं वो, अवसर की तलाश में है। कब ये थोड़े ढीले हो जाए और आक्रमण, तो केवल फूकने से, केवल चेतन के संकल्पों से ये नहीं जाने वाले। इसके लिए कठोर साधना चाहिए, गहरी साधना चाहिए, इसके लिए वहां तक पहुंचना पड़ेगा। और जैसे कहा था ना, कॉन्शियस सबकॉन्शियस, बीच में जो बैरियर है प्री कॉन्शियस, वो खुलता है सुबह सुबह और रात को सोते समय। तो बेस्ट टाइम जो है श्रेष्ठ संकल्प करने का, उठते ही पहले 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, वहां पर अगर श्रेष्ठ संकल्प कर दो तो वो सीधा सबकॉन्शियस में जाते हैं। रात को सोते समय जब बिस्तर पर है वो सबसे उपयुक्त समय है योग करने का, वहां योग चालू करना है कि आत्मा अभी तन से निकल कर जा रही है ऊपर और देह नीचे रह गया है। गाड़ी को गैरेज में लगाओ और ड्राइवर चले ऊपर अपने घर। आ जाएगा, उसकी चिंता नहीं करो। बहुत जन्म के संस्कार है नीचे आने के, जाने के संस्कार कम है। हाँ, ड्यूटी, जब ड्यूटी होगी तो स्वतः ही संकल्प उठेगा कि चलो अब गाड़ी में, पर तब तक ऊपर अमृत वेला से ही शुरू हो जाते हैं। तो विकारों का त्याग, ये भी एक त्याग है और ये सबसे बड़ा त्याग है। व्यर्थ का त्याग, विकारों का त्याग, सुख सुविधाएं, विलासिता का जीवन, भोग का जीवन, एक योगी का जीवन, एक भोगी का जीवन एक सरेखा नहीं हो सकता, दोनों मार्ग विपरीत है। भोगी का जीवन इस ओर है, योगी का जीवन इस ओर है, दोनों में जलना है, पर दोनों में कठिनाई है। वो भोग प्राप्त करने के लिए भी दुनिया में मरना पड़ता है, ऐसे नहीं मिलता है भोग, बहुत पैसे कमाने की दौड़ कैसी है, पागल हो जाना पड़ता है उसमें, उसमें भी जलना है, इसमें भी जलना है, फर्क क्या है फिर? इसमें भी जलना है, इसमें भी तपस्या है, इसमें भी साधना है, इसमें भी मनन चिंतन तपस्या, अशरीरीपन का अभ्यास, शरीर से बाहर निकलने का अभ्यास, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चिंतन, ये भी जलना है, और उधर भाग दौड़ है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन जिसको कहते हैं संसार में, वो भी है उधर। परंतु जलते जलते भोगी राख हो जाता है, योगी जलते 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 एक दिन हीरा बन जाता है, और वो हीरा क्या करता है, प्रकाशित करता है संसार को। यही अंतर है, जलना तो दोनों इधर है, परंतु ब्राह्मणों के जल में अभी अभी पुरुषार्थ और अभी अभी प्रारब्ध साथ साथ है, कल की मुरली से, वहां वो नहीं है। वहां सोचते हैं कि बाद में मिलेगा, ये कर लू फिर मिलेगा, ये कर लू फिर मिलेगा। तो बाबा कह रहे हैं, तो त्याग किन किन चीजों का करना है? विकारों का, व्यर्थ का, भोग विलास, भोग विलासिता का जीवन नहीं, अनावश्यक इच्छाओं का, व्यर्थ बोल का, व्यर्थ संकल्पों का, नाम मान शान की इच्छाओं का, ऐसी वो हर बात का जो हमारे और बाबा के बीच में है, ऐसी हर वो बात, कुछ भी हो सकती है, फिर अच्छे से अच्छी भी हो सकती है, परंतु वो उनकी, उसके और हमारे अगर बीच में है तो उसको हटाना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए फिर। तो बाबा कह रहे स्वयं के त्याग से औरों का भाग्य बनता है, जहां स्वयं का त्याग नहीं वहां औरों का भाग्य नहीं बनता। दूसरों का भाग्य बनाना है तो कुछ कुछ त्याग करना पड़ेगा। बाप ने स्वयं का त्याग किया तभी तो आप अनेक आत्माओं का भाग्य बना। तो शुरू की स्थिति में स्वयं के सभी सुखों का त्याग था, इससे यह भाग्य बने। अब जितना त्याग उतना भाग्य बना रहे हो औरों का, इसलिए वारिस छिप गए हैं। तो अब फिर से वही महादानी बनने का संस्कार, वह सदा सर्व प्राप्ति होते हुए भी और सर्व साधन होते हुए भी साधन में न आओ, साधना में रहो। यहाँ मुरली चल रही है साधनों के ऊपर, साधनों में फंस जाना। और 21वीं सदी का सबसे बड़ा साधन जिसमें सब फंसे वो कौन सा है? वो जेब में ही है, रावण की अंतिम चाल। बाबा कहते दुनिया के देह सहित देह के सर्व संबंधों का त्याग करो। यहाँ पे संबंध नए नए बनाते हैं, फिर नए संबंध, नए मित्रों की रचना की जाती है। फेसबुक किस लिए है? उसी के लिए ना,
ग्रुप में जुड़े तो जुड़ जाते
हो। हाँ। तो यहाँ तो बंधनों को कम करना है। निर्बंधन जो है कल की मुरली, वही उच्च पद पाएंगे, उच्च स्टेज पर वही रहेंगे, बाकी नहीं। अपने बंधनों को देखना कि मेरे क्या क्या बंधन है, कौन से वो बंधन है, कौन सी वो सलाख वो जंजीरे है जिसको हमने आभूषण की तरह मान रखा है, जिसे हम अपना श्रृंगार समझते हैं और बड़ा गर्व है उस श्रृंगार में, सोचते हैं हम बड़े सुंदर दिखते हैं इससे, पर शायद वो क्या है? श्रृंगार नहीं है वो। कारागृह में हर आत्मा अपने ही संस्कारों के कारागृह जेल में बंद फंसी है, उसे बाहर के कोई बंधन नहीं है, बस अंदर के ही सारे बंधन है, उसी में फंसी है वो। उसके ही मन की ग्रंथियां कॉम्प्लेक्सेस से वो जटिल हो गया है, कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी हो गई है। उसे यही समझने, वो बाहर के संसार को देख रहा है पर सारा संसार विदिन है। माइक्रोकॉजम मैक्रोकॉजम, माइक्रोकॉजम जो होता है वो इंदर, मैक्रोकॉजम जो बाहर का इंटरनल मिल्यू, जिसको कहते हैं इंटरनल एटमॉस्फियर, मेडिकल में एक टर्मिनोलॉजी आती है इंटरनल मिल्यू, अंदर का हमारा वातावरण क्या है, अंदर का वायुमंडल क्या है, अंदर क्या हो रहा है। क्योंकि अंतर जगत जो है उसके सामने बाह्य जगत कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा है। हमारे अंदर में जो जगत है वो बहुत विशाल बृहद। तो यहाँ बात चल रही है शुरुआत में साधना ज्यादा थी, क्यों? क्योंकि साधन कम थे, और जब साधन कम होते हैं तो स्वतः ही साधना बढ़ जाती है। जब सारे ही साधन उपलब्ध हो जाते हैं तो ध्यान, देह श्रेष्ठ तपस्या करने के लिए भी साधन है, पर बिना देह के तो आत्मा तपस्या भी नहीं कर सकती ना। यहाँ स्थूल साधनों की बात चल रही है, विज्ञान के दिए हुए साधनों की बात चल रही है। बाबा ने यह भी कहा ये सब तुम्हारे लिए बने हैं ताकि तुम अच्छी तपस्या कर सको, परंतु तपस्या न करके उसमें ही फंस गए, फंस रहे हैं। फिर जरूरत है तो करना ही है, वही तो कह रहा हूँ। यही ये अध्यात्म यही है बैलेंस, क्या कितना जरूरी है ये जानना बस, नहीं तो हर चीज बंधन बन जाएगी। हर चीज, छोटे से छोटी चीज भी बंधन बन सकती है जिसका हमने कभी सोचा ही नहीं। जैसे किसी व्यक्ति को बहुत डर लगता था, बहुत डर लगता था भूत प्रेत का, दिन रात उसको भूत प्रेत दिखते थे। एक चलता फिरता योगी जा रहा था, उसको मिला, उसने कहा कि कुछ करो, दया कृपा आशीर्वाद, ये भूतों से बचाओ मुझे। तो उसने कहा अच्छा ये लो एक ताबीज, यहाँ बांध लेना, जब तक ये ताबीज बंधा हुआ है कोई भूत प्रेत, कोई बाधा, कोई छाया, कोई परछाया, कुछ नहीं आ सकता तुम्हारे पर। तो बोलते अच्छा, और वो लगाता है, और तो वास्तव में वैसा ही होता है। कोई भूत प्रेत जो उसको भय था मिट गया, परंतु अभी एक दूसरा भय जागृत हुआ कि ये ताबीज कहीं चला ना जाए, अगर इसने किसी ने इसको चुरा लिया तो बार बार इसके ऊपर ध्यान है ना। रात को सोता है तो लगता है कोई निकाल ना ले जाए, है ना। वो तो छूट गया, एक बंधन तो गया, अभी नया बंधन तैयार हुआ, उसको छुड़ाने के लिए ये आया था, अभी इसको छुड़ाने से इसका क्या करे? अभी लगता है ये अगर गया तो फिर से भूत आ जाएंगे, तो उसमें फंस गया। बाबा ने कहा निर्बंधन, स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट, किसी पर भी निर्भर ना। वो जा रहा है, सब बैठ रहे हैं और हम चिंतन कर रहे हैं, ज्ञान का तो चिंतन होगा, जिस दिन क्लास खत्म उस दिन चिंतन भी खत्म, ऐसे है ना। और बाबा जो साधनों के विषय में अगर बाबा थोड़ी थोड़ी भी तारीफ कर दे तो कैसे झपक के पकड़ लेंगे उसको कि बाबा ने कहा है। और बाबा ने जो इतनी सारी बातें अब तक कही है, सोचो अगर किसी अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा कि जो भी बच्चे हैं उनके पास कुमुद बहन एंड्रॉइड का एक सैमसंग गैलेक्सी का अच्छा मोबाइल चाहिए, उसके सिवा आप ज्ञान में आगे नहीं बढ़ सकते, अगर अव्यक्त वाणी में ये वाक्य आ जाए, अगर हो तो चिंतन बहुत अच्छा हो। तो बाबा ने अब तक बहुत कुछ कहा है कि ये करो तो बहुत आगे बढ़ोगे, ये कहो तो बहुत, पर अगर सोचो अगर बाबा ऐसा बोल दे तो क्या हो जाएगा देखना, ब्राह्मण अच्छा तो ब्राह्मण परिवार में हलचल, वो तपस्या रहेगी बाजू में, वो चाहिए बस, फिर तपस्या देखेंगे, तपस्या करना नहीं करना वो बात की बात है, पहले तो वो चाहिए क्योंकि बाबा ने कहा है। अरे पर बाबा ने बहुत सारी चीजें और भी कही है। तो वो जैसे उस दिन विजिटिंग रूम का आया ना, हाँ बाहर विजिटिंग रूम चाहिए, किस लिए चाहिए वो छोड़ो, बाबा ने बोला विजिटिंग रूम चाहिए, बस उसके पीछे लग जाओ, फिर सोचो पर्दे कौन से चाहिए और क्या, सोफा कौन सा चाहिए, बस। तो श्रेष्ठ साधना तब होती है जब साधनों से हम ऊपर होते हैं। साधन है तो बहुत अच्छा, साधन नहीं है तो भी बहुत अच्छा, है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, उसके ऊपर निर्भर नहीं, आश्रित नहीं।
सबसे पहले इंटरनेट फेल होंगे, देखना कैसे
हलचल। आश्रित नहीं बनो, पैरासाइट नहीं बनो, वो जो होती है ना क्या कहते हैं उसको, क्रिपर, बेल, वो नहीं बनो, क्या बनो, बरगद का वृक्ष बढ़ो, बन जाओ इंडिपेंडेंट। वो आश्रित होती है किसी पर, हाँ मालिक ही, तो किसी पर भी आश्रित नहीं, किसी साधन पर, किसी वैभव पर, किसी साधन पर, किसी व्यक्ति पर। कई लोग कह रहे थे ना इन ये जब होंगे तो जाएंगे, नहीं तो नहीं, ये आना चाहिए साथ में तो जाएंगे। मधुबन में आने की बात, उधर से यहाँ, तो पहले साधन कम थे, साधना ज्यादा थी, इसलिए अभी निरंतर उस साधना में रहो, अर्थात साधन होते हुए भी त्याग वृत्ति में रहो। साधन तो है परंतु उपराम है उनसे, जिससे थोड़े समय में ऊंची आत्माओं का भाग्य बना सको। इसमें उदाहरण देते हैं राजा जनक का, सब कुछ था उसके पास परंतु अंदर से वैरागी था, अति वैरागी। व्यास अपने पुत्र को भेजता है उसके पास, जाओ राजा जनक के पास, तुम्हें सन्यास के बारे में कुछ बताएगा वो। उसका पुत्र सुखदेव वो आता है, 3 दिन तो उसको द्वार के बाहर ही खड़ा करके रख देते हैं, प्रतीक्षा करो। और जब आता है अंदर तो देखता है क्या थाट बाट, क्या वैभव, ये मुझे सन्यास की दीक्षा देगा, ये मुझे सन्यास के बारे में, मैं पहले इतना त्यागी तपस्वी हूं। और जब राजमहल में अंदर सभागार में प्रवेश करता है तो देखता है नर्तकियां नृत्य कर रही है और राजा जनक बैठे है, ये और मुझे शिक्षा देगा। उससे मिलता है और ज्ञान चर्चा चालू होती है। उतने में बीच से ही एक द्वारपाल आ जाता है, कहता है कि दूसरे राजा ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया। तो जनक कहता है ठीक है ओके, फिर चर्चा चालू ज्ञान की। फिर उसके बाद में फिर दूसरा एक व्यक्ति आता है, दूसरा सिपाही, कहता है कि वो सेना हमारे राज्य में घुस गई है। तो कहता है ठीक है। फिर थोड़ी देर के बाद वो कहता है कि वो सेना अभी राजमहल में घुस गई और आग लगा दी है राजमहल को। तो कहता है ठीक है लगाने दो। हाँ चलो, हमारी क्या चर्चा चालू थी ज्ञान की? अच्छा तो ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है? तो वो कहता है कि ये कैसा राजा है, इधर शत्रु ने आक्रमण कर दिया, राजमहल को भी आग लग गई अभी। और वो दूसरा एक आता है कि आग बस ये कक्ष तक फैलने आने वाली है। तो वो सुखदेव भागता है, बोलते तुमको क्या हुआ? तो बोलता है मेरा एक कपड़ा बाहर रखा है वो जल जाएगा। उसे चिंता है। नष्ट मोह की जो अवस्था है, सब कुछ खत्म हो जाए तो भी अप्रभावित, ये नष्ट मोह की अवस्था, ये है योगी की अवस्था। सब कुछ है परंतु फिर भी कुछ, अगर सब कुछ छीन भी लिया जाए, क्योंकि हमारी संपदा ये नहीं है कल्प की मूर्ति। बाप का वर्षा क्या है? खुशी। ये हमारी संपदा है, इसको हमको बांटना है, ये कोई छीन नहीं सकता। ये संसार के वैभव, संसार के सुख संपत्ति, ये सब तो नष्ट हो जाएगा, परंतु वो जब तक है उनका उपयोग करे साधना के लिए, परंतु निर्भर ना हो जाए उनके ऊपर, ऐसी हमारी श्रेष्ठ साधना हो। तो बाप दादा ने सभी के हाथ में अब आत्माओं के भाग्य की रेखा लगाने की अथॉरिटी दी है। तो ऐसा ना हो कि अपने त्याग की कमी के कारण अनेक आत्माओं के भाग्य की रेखा संपन्न न कर सको, वो हम पे दोष दे, बहुत जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितनी पावर बढ़ती है उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है। जैसे जैसे समीप आता जा रहा है वैसे वैसे संकल्प में भी व्यर्थ न गवाने की जिम्मेवारी भी हर एक आत्मा के ऊपर बढ़ती जा रही है। ये सोचना कि हम तो बहुत अच्छा अमृत वेला करते हैं और मुरली भी पढ़ते हैं और मुरली की चर्चा भी करते हैं, चिंतन भी करते हैं, सारे दिन भर में बीच बीच में ध्यान भी रहता है और शाम को योग भी करते हैं, परंतु व्यर्थ संकल्प जो चल रहे हैं, बाबा ने कहा क्योंकि समय समीप आ रहा है, तो व्यर्थ संकल्प चलते रहना, वैसे वैसे संकल्प में भी व्यर्थ न गवाने की जिम्मेवारी भी हर एक आत्मा के ऊपर बढ़ती जाती है। अभी अपना बचपना नहीं समझना, अभी भी व्यर्थ संकल्प, संकल्प तो ऐसे है कि चलते ही रहते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, संकल्प चलना चालू, किसी ने कुछ गलत कर दिया, संकल्प चलना चालू। अब कुछ ना कुछ तो संकल्प चलेंगे, ऐसा नहीं कि संकल्प बंद हो जाए, परंतु हमें फिर उसको साक्षी होकर देखना है कि कैसे ये पॉजिटिव हो जाए, कैसे इनका वो गंगा जो बह रही है उसको रोका नहीं जा सकता है, उसको मोड़ना होगा, सागर तक पहुंचाना है। अगर उसको रोकने का प्रयास करोगे तो तोड़ देगी, दमन करने का प्रयत्न करोगे तो विक्षिप्तता आएगी। इसके लिए बचपन में जो किया वह अच्छा लगता था, बच्चे का अलबेलापन अच्छा लगता है, बच्चे को होगा, बच्चे को अलबेलापन अच्छा लगता है, बड़प्पन नहीं, और बड़ों को फिर अलबेलापन अच्छा नहीं लगता। इसलिए समय के प्रमाण अपने समान को कायम रखते हुए जिम्मेवारी को संभालते जाओ। तो हमारे ऊपर कौन सी जिम्मेवारी है? संकल्प को, संकल्प में भी कहीं व्यर्थ ना है, हमारा काम बहुत सूक्ष्म होता जा रहा है। समय की समीपता प्रमाण हमको जो कार्य करना है, वर्क करना है, किस लेवल पे करना है? थॉट लेवल पे करना है। थॉट क्राइम्स एक इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी है, थॉट क्राइम्स जिसको कहते हैं संकल्पों से होने वाले अपराध। अपराधी है ही, हाँ, संकल्पों की वो जो अष्टरतन है वो संकल्पों की सजा से भी मुक्त है। हाँ वो तो है, श्रेष्ठ इच्छा, शुभ इच्छा, श्रेष्ठ कामना, ये तो चाहिए ही चाहिए। तो वही तो परिवर्तन की बात है, जो संसार की ओर जा रहे हैं अभी, संकल्प श्रेष्ठ संकल्प हो ये करना है, ये संकल्प चाहिए, श्रेष्ठ संकल्प, महान संकल्प, उन्हीं के आधार से तो सब कुछ है, क्योंकि संकल्प ही तो बीज है। इसके लिए महान संकल्पों की रचना करना, जैसे अभी हमने ये पढ़ा, ये पढ़ के यहाँ पूरा नहीं हुआ है, ये पाठ अभी पूरा नहीं हुआ है। अगर यहाँ से जाने के बाद दिन भर में जो हमने यहाँ पढ़ा उसको अगर फिर से नहीं पढ़ा तो समझ लेना जस के तस जो की उत्यो बस। जैसे सत्संग में जाते हैं, अच्छा अच्छा करते हैं, सुना, जब उठते हैं तो कपड़े झटकते हैं, झटकने के साथ साथ जो सुना उसको भी झटक कर जाते हैं। राम कथा, ये भागवत कथा, नीचे बैठते हैं ना वहां तो जमीन पर, तो वो बस वैसा ही है। जब तक यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं उसको यहाँ से जाने के बाद फिर उसे पढ़ना, इसके लिए कहा ये किताब जो हम पढ़ रहे हैं सबके पास होनी चाहिए। इसका नाम है आलस्य और अलबेलापन। चलो संकलन किया है वो
को कर
वो आलस्य एक शब्द है ना उसमें, आलस्य स्पार्क से मिल जाएगी आपको, बल्ब का आलस्य स्पार्क, स्पार्क ज्ञान सरोवर में। तो केवल सुनना नहीं है, कल की मुरली से स्वरूप में लाना, अनुभव करना, समझ अर्थात ज्ञान अर्थात समझ, प्रैक्टिकल रियलाइजेशन। जो त्याग के बारे में पढ़ा वो पढ़ के छोड़ नहीं देना है, अभी इस चिंतन को यहाँ से बढ़ाओ, यहाँ से तो शुरुआत है, ये तो एक धक्का है केवल पढ़ना और सुनना, यहाँ से स्टार्ट हुई है गाड़ी, अभी इसको थोड़ा अगर ऐसा ही छोड़ दिया सोचेंगे कल देखेंगे अभी आगे का क्या है, तो नहीं होगा। पढ़ना है ना, पढ़ना है, स्टूडेंट जैसे पढ़ते हैं ना, स्टूडेंट कैसे पढ़ता है, दिन रात पढ़ता है, वैसे यहाँ पढ़ाई करनी होती है, एग्जाम दफ्तर हाँ उसका बैग हमेशा साथ रहता है। हमारे ओपीडी में कई सारे बच्चे आते हैं, मतलब पेशेंट जो आते हैं उनके साथ बच्चे आते हैं, जो भी बच्चे आते हैं फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि एक कविता सुनाओ, तो कोई कोई इतने होशियार होते हैं, इतनी अच्छी अच्छी कविता सुनाते हैं, कोई इंग्लिश में, कोई हिंदी में, इतने छोटे छोटे, ईर्ष्या होती है कि हम क्या थे और ये देखो कितने होशियार है आजकल के बच्चे, सब कितना उनको समझ में आता है, हर चीज उनको समझ में आती है, हर पूरा वैसे के वैसे सुनाते हैं, कितने होशियार। तो बच्चों की लगन होती है ना उस तरह की, तो हम भी तो इस ज्ञान के प्रति हमारी ऐसी लगन हो, स्टूडेंट लाइफ, स्टूडियस बनना है, ठीक है ना मंजू बहन, अपने डिपार्टमेंट में भी यहाँ वहां कुछ कुछ लगा दो और बीच बीच में नजर जाती रहे उसमें, ये है वो है, ये है वो है, जो ये पढ़ा हम सब, मैं और आप सब जो सुन रहे हैं वो सभी इसको फिर से पढ़े, फिर से उसकी गहराई में जाए, यहां तक अगर हो सके तो ये जो मुरली थी वो मुरली निकाले और उसको पूरा पढ़े। हर दिन एक अव्यक्त वाणी हर एक ने रोज पढ़नी है, ये है पर्सनल होमवर्क सबका। साकार मुरली उसका चिंतन मनन वो तो है ही, अब ये मत कहना कि टाइम नहीं है, योगी बनने के लिए टाइम की आवश्यकता नहीं है सबसे बड़ा चीज एक ही है कि टाइम नहीं है, टाइम तुम्हारा कहाँ जा रहा है उसको ढूंढो तो पता चल जाए। एक इंग्लिश का जो ग्रामेरियन है वो लिखता है, वो जब देखता है कि लोग इंग्लिश बोलते बोलते कितनी गलतियां करते हैं भाषा में, वो ग्रामेरियन मतलब व्याकरण व्याकरणकार, वो लिखता है अगर ये जो व्यक्ति है जो अपना समय बर्बाद करते हैं ये व्यर्थ की बातें करने में, पान ठेले की दुकान में, चाय की टपरी पर, इधर उधर जाने में, इधर उधर घूमने में, अगर ये अपना सारा समय इंग्लिश और इंग्लिश के व्याकरण का अध्ययन में लगा दे तो दे विल बिकम परफेक्ट स्पीकर एंड राइटर फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। वो अपने हिसाब से लिख रहा है कि वो लिखता है कि लोगों को जब मैं इंग्लिश बोलते हुए सुनता हूं तो ऐसा लगता है टू कमिट सुसाइड, ऐसी खतरनाक बोलते हैं। वो तो ग्रामेरियन है ना, ग्रामर का अध्ययन करने वाला, तो वो उसने ही लिखा है, बहुत प्रसिद्ध ग्रामेरियन एक, जो लिखता है कि जो टाइम इधर व्यर्थ जाता है अगर वो इस स्टडी में लगा दिया होता तो ऐसा ना होता। इसके लिए ये भी हमारी स्टडी है, तो ये कोई नहीं कह सकता सुधा माता कि मेरे पास टाइम नहीं है, योगी बनने के लिए टाइम की आवश्यकता नहीं है, ज्ञानी बनने के लिए टाइम की आवश्यकता नहीं है, कैसे समय को चुराना चुराना होता है पांच मिनट चुराने होते। कल की मुरली में हम एक बात कहना भूल गए, उधर जो स्टूडेंट का उदाहरण दिया था बाबा ने, मार्क्स कैसी जमा होती है, ऐड होती है ना स्कूल में, तीन मार्स, फिर छह मार्स में एग्जाम होती है और फिर करेक्ट कनेक्शन होता है सब मार्क्स का फाइनल में, वैसा इधर भी है। तो उसी तरह 24 घंटा है। अभी इस 24 घंटे में से अगर बैठ गए मधुबन के आंगन में, बोलो क्या हो रहा है वो डिपार्टमेंट में, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, चलो आज भालू मिला नहीं मिला, अच्छा आज ठंडी कितनी है, आज टेम्परेचर कितना है, अच्छा उधर ये हुआ उधर वो हुआ, पार्टी में कौन कौन आया, अच्छा ये बहन अब तक क्यों रुकी है, इसको तो जाना चाहिए था, अब तक यहाँ क्या कर रही है, एक मास हो गया है, कहाँ से है, कुछ खबर है, अभी पता करते अच्छा ये यहाँ बैठता था योग के लिए, अभी यहाँ नहीं बैठ के वहाँ क्यों बैठता है, क्या बात है, कुछ तो होगा क्यों देवेंद्र भाई, बराबर है ना सुनहरी टोली जो दादी जानकी कहते ना, सुनहरी टोली, अगर इसमें हमारा समय जा रहा है तो समय को तो चुराना है, जहाँ टाइम मिले पकड़ लो वाक्य, वो महावाक्य इधर उधर लिखे है ना, जहाँ खड़े हो वहां सामने कोई ना कोई स्लोगन लिखा हुआ है, उस स्लोगन पर बुद्धि जाए और उसके ऊपर चिंतन वहां चालू कर दो। पानी पीने जाते हो तो पानी पीने के वहां पर कुछ लिखा हुआ है उसके ऊपर बुद्धि जाने दो, अगर वहां से गुजरते हो वहां मुरली लिखी हुई है पिछले दिन का स्लोगन, जरा बुद्धि उस पर डालो, हर जगह कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। ओम शांति।